ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल भी दिया है और टाइटल के साथ साथ बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं और बाबा की जो प्यार के शब्द हैं बच्चों को किस प्रकार से बाबा के प्यार में बाबा की तरफ आकर्षित करते हैं। बाबा ने सेवा के लिए भी विशेष युक्ति बताई और स्वयं की चेकिंग के लिए भी बाबा ने कहा बच्चों को अपना चार्ट भी लिखना है और चेक करना है। पहले बाबा ने कहा कि बाबा जब कहते हैं मेरे बच्चे, तो बच्चों को कितना बाबा के प्रति प्यार जागृत होता है, जिसको बाबा ने कहा कशिश होती है। कशिश में अट्रैक्शन, बाबा से प्यार, बाबा के नजदीकीपन का अनुभव होता है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम मेरे लक्की स्टार्स हो, लक्की बच्चे हो। हर रोज बाबा अनेक प्रकार के टाइटल देते हैं और बाबा बच्चों को हमेशा उस स्वरूप में टिकने के लिए ध्यान खिंचवाते हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं, किस लिए आते हैं? बाबा से मिलने, अपने परिवार से मिलने, ब्राह्मण परिवार से मिलने के लिए। बाबा ने कहा यहाँ रिफ्रेश हो, जैसे बादल भर के जाते हैं और जाकर के वहाँ पर बरसात करो, वर्षा करो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सेवा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए और सेवा के साथ साथ अपनी चेकिंग भी करनी है, चार्ट भी लिखना। लेकिन कई बच्चे ऐसे कहते हैं बाबा मैं बाबा को याद तो करता हूँ लेकिन माया ऐसी है जो आकर के विघ्न डालती है, फिर पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस पर भी बच्चों को ध्यान देना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 2 मई 2026। मेले का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। आज का प्रश्न है बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उसका उत्तर है बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। आप सेंटर पर भी रहते हैं और क्लासेस करते हैं, हरे कोटा मधुबन जाए। मधुबन में आते थे बाबा के पास, बाबा कहते थे आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे। बाबा हमेशा कहते थे तुम मेरे बच्चे हो। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। बाबा के टाइम पर साकार में बाबा के सामने बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है। भट्टी वाले हाथ उठाओ, मधुबन आकर्षित करता तब तो आए ना, है ना? अब क्या मन करता है, यहीं बैठ जाए? बाबा ने कहा नहीं, यहाँ रिफ्रेश हो फिर सेवा पर जाओ। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। मधुबन क्यों आकर्षित करता है? बाबा सन्मुख, बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, और ईश्वरीय परिवार है और ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते। क्यों ब्राह्मण संगठन अच्छा लगता है? क्योंकि ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। दूसरी यात्राओं में जाते, अपने घर से जाते, फिर वापस वहां आ जाते। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं, हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है। अनेक यात्राएं हैं, लेकिन बाबा कहते मनुष्य नहीं जानते कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है जहां से कभी लौट कर आना न पड़े। वैसे कहेंगे, भगवान को पुकारते रहते, बाबा की तुमको पता ही नहीं है जहां से लौट कर कभी आना न पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा, क्या टाइटल मिला बोलो, तुम कौन हो बोलो ना जोर से, लक्की स्टार्स। पक्का रहेगा ना, आज वापस जा रहे हैं ना, तो बाबा ने पहले टाइटल दे दिया, तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है। ये पक्का, हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं, उनका अलग प्रकार का है, लेकिन बाबा कहते हैं ये शरीर पे वस्त्र पहना है फिर अब घर जाना है। वो तो अपने को शरीर में समझते हैं, यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे, ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े। अब ये कपड़े कैसे पुराने हो गए, कभी कुछ लगा ही रहता शरीर को, फिर कहते रहेंगे बाबा को, बोलो बाबा हमारे शरीर को ये बीमारी। बाबा ने जवाब दे दिया, ये पुराना है, इसको कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, शरीर नया, सब कुछ नया है। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं, तुम वो राजधानी के, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहने, दैवी शरीर मिलेगा। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाप भी फिर ऐसा गुणवान बना दे। भक्ति में तो कहते रहते ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। बाबा कहते बाबा आकर के तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा गुणवान बनाते। बाप कहते मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता। बाबा का पार्ट है, यहाँ ये है जीवन बंद धाम, रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पति से पावन बनकर फिर पावन से पतित कैसे बन। बाबा ने कैसे कहा, ये है जीवन बंद राज्य, रावण राज्य। बाबा कहते तुम जानते हो हम पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है और अभी है संगम। कलयुग के संगम युगे बाप को आना पड़ता। बाबा कहते हर युग में नहीं आता हूँ, कब आते, कलयुग के संगम युगे बाप को आना पड़ता है। दुनिया वाले अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है। अब हालत क्या है, दुनिया वाले तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है, दुनिया में क्या होगा, इतने चिंतित है विनाश होगा तो क्या होगा। तो बाबा ने ये शब्द बहुत टाइम पहले कहे थे, उस समय बाबा के टाइम जब लोगों को कहते थे ना विनाश होना है तो लोग क्या कहते थे, शुभ बोलो शुभ बोलो, ब्रह्मा कुमारी ऐसे बोलते थे। अब ब्रह्मा कुमारी विनाश शब्द नहीं कहते, अब वो क्या कहते हैं, स्थापना होनी है। लेकिन दुनिया वाले विनाश शब्द कहते हैं। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अविनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहां गुप्त वेश में रोज नई नई बातें करते रहते हैं कि भगवान आया होगा, कहां आया होगा, किस रूप में आया होगा, ऐसे बातें करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। और स्थापना अर्थ भगवान कहां गुप्त वेश में है, अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो ना, गुप्त वेश में नई दुनिया की स्थापना में बाबा के साथ तुम भी गुप्त रूप में कार्य कर रहे हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये मनुष्य चोला भी गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है, कौन सा, ब्रह्मा का तन, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं, बाबा को अपना शरीर नहीं है, उनको तो शरीर है नहीं, तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा के साथ आत्मा का अब मोह हुआ है, गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़े। दुनिया में कैसे एक दो के मोह में फंसे हुए गाते रहते हैं, परंतु मोह से तो निकल नहीं सकते ना। तो बाबा कहते गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। दुनिया वाले गाते हैं और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, जैसे आप मोह जीतो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, पता है बाबा के पास जब बच्चे आते थे बाबा एक स्लोगन कहते थे, पता है क्या कहते थे बाबा, कौन बताएगा, कोई बता, याद है क्या बोलते थे बाबा, गो सुन कम सुन, याद है कोई, किसको याद है, हाथ खड़ा करो। अच्छा दूसरा स्लोगन याद है, बाबा कहते थे ना विसरो न याद रो, कभी कभी बाबा विसरो मीन्स ना भूलो, बाबा को ना बच्चे भूले और ना बाबा का बच्चों में मोह, लेकिन बाबा को याद भी करना है, विसरना भी, भूलना भी नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते थे, कभी कभी बच्चों को कहते थे ना विसरो न याद रहो, ऐसा नहीं कि बाबा आपके मोह में आ जाए और बच्चे भी मोह में फंसे रहे, बाबा को भूलना भी नहीं है और किसी से मोह भी नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं जैसे आप मोह जीत हो, बच्चे कहते हैं वैसे हम भी बनेंगे। बाबा तो बहुत मोह जीत है, कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ काले जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसा होगा। बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं मोह विनाश कराने के लिए और दुनिया भी समझ रही है, तो फिर पुरानी दुनिया से मोह क्यों रखे। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसा होगा। पतितों का जब विनाश हो तब शांति का राज्य हो, इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं, ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम शिवालय पड़ा। आज दुनिया में अनेक शिवालय हैं, लेकिन सत्यों का नाम भी बाबा कहते हैं शिवालय है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय, और वह है शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वो तो जड़ हो गया। अभी देखो कितने मंदिर हैं, शिवालय हैं, उसमें शिव की प्रतिमा रख देते, बाबा कहते वो जड़ शिवालय है। चैतन्य शिवालय क्या है, सत्युग है, वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। तो बाबा हर बात को कितना क्लियर करके बताते हैं ना। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर पूजी बन गए हैं, तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर क्या नहीं करेंगे, बताओ बाबा, पूछे क्या करेंगे। जैसे भक्ति के हिसाब से माथा टेकते वैसा नहीं करेंगे, बल देखने दिखाने के लिए लोगों को ये ना रहे कि ये लोग मानते नहीं हैं, भक्ति के हिसाब से माथा नहीं टेकेंगे। बाकी किस भाव से देखेंगे, हम ही इसकी राजधानी में जाने वाले हैं। तो बाबा कहते अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, तुम तो उनकी चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता थे अब नहीं हैं, जो पास होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। बाबा के टाइम पर सबसे जास्ती लक्ष्मी नारायण के मंदिर कौन बनाता था, बिरला बनाता था। तो बाबा कहते बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर, कई जगह मंदिर थे, सदा उनके मंदिर बनते ही रहते थे, सदा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। बाबा कहते थे बिरला को जाकर समझाओ कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर उनकी राजधानी कैसे स्थापन हो सकती है। तो बाबा ऐसी सेवा की युक्ति बताते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनके भी गए थे अपने भाई बहने, उनको बताया था, सेवा किया, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इनके 84 जन्मों की युक्ति से सौगात दे दीजिए। कौन सी, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दो और युक्ति से उनको बताओ। युक्ति से सौगात देनी चाहिए, इसकी युक्तियां तो बताते रहते हैं। माता जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो, बाबा माताओं को क्यों बोले, वो भी आप समझेंगे। बाबा कहते भाई जाएंगे थोड़ा बहस कर देंगे, माताएं जाएंगी थोड़ा सॉफ्ट बोलेंगी, फिर भी बाबा ने कहा कैसे समझाना है। माताएं जाकर के बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। माताएं बोलती वो सुन लेते, बहस नहीं करते। कुमारियां जाती है सुन लेंगे, बहुत प्यार से सुन लेंगे, भोली भोली माताएं, चलो अच्छा ठीक है जो बोला ठीक है। तो बाबा कहते हैं माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो, हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। तो बाबा कहते बहने जाए उनको बताए, हम जानते और समझा भी सकते हैं, समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, ऐसे ही जोर जोर से ज्ञान दे। इतना कही तो इतना जोर जोर से ठुक ठुक करके गया, ना भी सुने तो भी सुनाते रहते। कई भाइयों को हम देखते इतना ज्ञान सुनाते, सुनने वाले को टाइम हो या ना हो लेकिन वो जाना चाहता तो भी उसको सुनाते रहते। तो बाबा भी कहते बहनों को इतने प्यार से बोलो वो खुद कहे कि नहीं हमको सुनाओ। तो बाबा कहते समझा भी सकते, समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप पे बैठ समझाते हैं ना, बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है, कई कई बांधेली होती है छुट्टी नहीं मिलती है, बाबा के घर नहीं आ सकते, तो बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। बाप पे बैठ समझाते हैं ना, बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, मुरली तो मिल जाती है। अभी मुरली कैसे मिलती है, हर एक के मोबाइल में मुरली होगी, यहाँ सुनेंगे। कई बार हम देखते हैं शांति स्तंभ पर बैठते हैं बाबा को याद करने, वहाँ मुरली पढ़ते हैं। तो ये बाबा कहते आए हैं बाबा के घर में, बाबा को याद करो। बाबा के कमरे बैठते हैं तो बाबा को याद करो। मुरली तो शांति स्तंभ के बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, वहाँ बैठे हैं और मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते ये नियम नहीं है, मुरली सुनने का स्थान जो है वहां पर बैठ के सुनो। तो बाबा कहते मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी हो गई। मधुबन में आने से अब नहीं चांस मिलता तो वहां भी याद कर सकते। बाबा कहते ऐसे नहीं है, यहाँ भी होती है लेकिन कई ऐसे पक्के हो जाते ना, वहां हम याद नहीं कर सकते, यहाँ याद करें। अरे यहाँ तो सदा नहीं रह सकते ना, तो बाबा पक्का कराते ऐसे नहीं, यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर बैठने से भी याद की यात्रा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। घर में भी बाबा को याद करना है, चलते फिरते खाते पीते बाबा को याद करना है। बादल आते हैं किस लिए, बताओ अभी, भट्टी वाले बताओ, बादल आते किस लिए है? भरने के लिए, किस लिए? भरा कि नहीं? जिसने बादल भर ले वो हाथ खड़ा करो। बाबा को बताओ हमने भर ले, भरपूर है, फिर से हाथ खड़ा करो। देखो बाबा आपको देख रहे हैं, बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा पास सन्मुख जाए, हर बार रहता ना मधुबन जाए मधुबन जाए, और मधुबन में आते तो कितने अनुभव हो जाते, कितनी प्राप्ति होती है। तो बाबा पास सन्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं, और बाबा क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बाबा क्या कहते बताओ, क्या बोलते पता नहीं है, भूल गए क्या? बाबा कहते बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, बोलो बाबा क्या कहते हैं? बाबा के, और बच्चे क्या कहते हो बताओ, बाबा आप हमारे हो, है ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? फिर से बोलो, सभी बोलो, बाबा आप हमारे हो, ये पक्का करना है। शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, तुम आते हो मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म भी नहीं लेता हूँ, अजन्म भी। बाबा कहते मैं अजन्मा हूँ, मैं कोई जन्म भी नहीं लेता हूँ, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता, मैं अजन्मा हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते, तुम आत्माएं आती हो बच्चे के तन में आती हो, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते, मैं तो परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने, मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम विकारी बनते हो, गर्भ में आते हो, बाबा कहते मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ, मुझे कहते भी हो तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा, मेरा कोई भी माँ बाप हो न सके। बाबा का कोई भी माँ बाप नहीं है कि नहीं है कि नहीं? अब बच्चे कहते हमने बाबा को अपना बच्चा बनाया तो बन गया ना माँ बाप, हैं बने कि नहीं? लेकिन वो माँ बाप कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरा कोई भी माँ बाप हो ना सके, मैं तो सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ, तो मुझे बुलाते भी हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब मैं सम्मुख आया हूँ आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते बाबा के पास आते थे छोटे बच्चे आते बड़े आते थे, बाबा हर एक की आत्मा को देखते थे, बाबा हमेशा कहते बच्चे बच्चे। जब शिव बाबा बात करते थे तो शिव बाबा कहते थे बच्चे, और ब्रह्मा बाबा जब बात करते थे तो वो कहते बच्ची और बच्चा, तो बाबा कहते बच्चा आओ बच्ची आओ, तो ब्रह्मा बाबा बात करें, और शिव बाबा के पास कोई भी जाए तो बाबा कहते थे बच्चे बच्चे। तो बाबा कहते हैं आत्माओं से बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ब्राह्मण हैं, तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते, बाहर जाते तो हंस भी हैं और बगले भी हैं, यहाँ मधुबन में तुमको संग ही है, किसका है? ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। मधुबन में आते हैं ज्ञान की चिट चैट करते हैं, बहुत सी बातें, फिर कभी कभी माया का संग लग जाता ना, इधर की बात उधर की बात भी कर लेते हैं। बाबा कहते मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो जिस लक्ष्य से आते हैं वो लक्ष्य को पूर्ण करना है और ज्ञान से भरपूर करना है। तो बाबा कहते तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो, यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है, एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। दुनिया में भी लोगों को ज्ञान सुनाओ कि बाबा आया हुआ है, बाबा के तो युक्ति से उनको समझाओ कि बाप को कैसे याद करें। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बाबा हमेशा पक्का कराते थे, साकार में बाबा भी बच्चों को कहते थे, बाबा भी बाबा को याद करके भोजन स्वीकार करते। कभी कभी बाबा उदाहरण दे देते, देखो मैं बाबा को याद करते करते भोजन करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन भूलते नहीं थे, बाबा केवल बच्चों को कहते थे। फिर बाबा भी हमेशा पक्का कराते थे। अभी एक कहानी सुना देती हूँ, हमारी दीदी मनमोहिनी, आपने तो देखा नहीं है, दीदी जब भोजन करते थे ना, वो क्या करती थी, कभी कभी एकदम धीरे से जाकर के टेबल के पास खड़ी हो जाती थी, और पता भी नहीं पड़ता था भोजन करने वालों को, आपस में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो दीदी जाकर के खड़ी हो जाती थी, बोलती कुछ नहीं थी, तो दीदी इशारे से कहती थी बाबा को याद करो। तो ये भी एक युक्ति थी। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि एक दो को याद दिलाते रहो और भोजन करते समय बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, यहाँ तो वहाँ तो विकारियों के साथ में रहते हैं, तो उनकी कशिश होती है। दुनिया में विकारी हैं, उनके मुंह में फंस जाते हैं, उनकी बातें कई प्रकार से अट्रैक्ट करती ना, तो बाबा की तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की भी कशिश नहीं होती है, वारियर्स वारियर्स के साथ रहते। तो दूसरा टाइटल कौन सा मिला, दूसरा था, पहले बोला लक्की स्टार, अभी कौन सा टाइटल मिला, वारियर्स है, रूहानी योद्धा ना, वारियर्स वारियर्स के साथ रहते हैं, तो उनकी कशिश होती है। तो बाबा कहते तुम्हारा ये कुटुंब है, बुद्धि में यही रहता है कि जो कोई मिले उसको बाप का परिचय दो कि भगवान को याद करते रहो। कोई भी मिले बाबा का परिचय दो और उनको बताओ कैसे बाबा को याद करना। कोई भी मिले उसको भगवान का परिचय दो और भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते हुए भी भगवान को याद करते हो, वो तो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे ना, बाबा समझाने की युक्ति बता रहे, वो लौकिक फादर है, उसके होते हुए भी बाबा को याद करते, भगवान को याद करते, तो लौकिक को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे ना। ये है परलौकिक बाप, जो गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा, ऐसे ऐसे भूम भूम करते। बाबा युक्ति बताते कैसे धीरे धीरे सबको ज्ञान सुनाओ, ऐसे ऐसे भूम भूम करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों का काम क्या है, ज्ञान की टुकड़ो टुकड़ो भूम भूम करते रहना। सन्यासी भी भूम भूम करते हैं ना, इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है, कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितने सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था, जो पवित्र थे वह अभी अपतित बने हैं, पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ परमात्मा को पुकारते आओ और दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मते हैं ना, कितनी बातें एकदम कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, एक तरफ पुकारते हैं, दूसरी तरफ कहेंगे ज्योति में ज्योत समा जाए, फिर कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी। तो बाबा की ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें, उन्हीं की बात को लेकर के उनको समझाओ। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है सन्यासियों की वृद्धि कैसे होते। जब सन्यास धर्म स्थापन हुआ तो पहले एक था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो बाबा कहते हैं ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है, दो प्रकार की है ना, तो नांगे भी हैं, तो नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें रहने से फिर अंत मति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते, तो बाबा बता रहे हैं कि जो जैसा अभ्यास करेगा, तो कोई शास्त्र पढ़ता है फिर छोटे पुनर्जन्म लिया, छोटेपन से ही वो शास्त्रों की बातें सुनाता है, क्योंकि वो संस्कार रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो फिर अंत मते सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते। कई बार देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो शास्त्रों की बातें करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कंठ किए हुए ना। तो फिर बाबा बता रहे हैं फिर छोटेपन से ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब देही अभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्यों बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं? बाबा ने पहले हमको बता दिया अपने घर जाना है, विनाश होना है, इसलिए बाबा फिर पक्का करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब देही अभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। साकार में बाबा का बहुत प्रैक्टिस थी। बाबा बच्चों को भी देख रहे हैं, लेकिन बाबा हर समय जब बात करते थे आत्मा से करते थे। तो इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, देह से देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। छोड़ो मीन्स बुद्धि से भूलो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बुद्धि से भूलो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है बाबा की याद करने में। कितने वर्षों से बाबा को याद करते आ रहे, बीच बीच में फिर भूल जाते। तो बाबा कहते इसमें टाइम तो लगता है जब तक कर्मातीत स्टेज ना हो, इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती। नहीं तो फिर बाबा भी कई बार कहते बच्चे इतने होशियार हो गए, ये नहीं कहेंगे कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, नाम दे देते माया का, माया का नाम देके अपने को छुड़ा देते। बाबा कहते ऐसे क्यों करते हो, माया तो आएगी, माया तो परीक्षा लेगी, तो माया का नाम क्यों लेते। बाबा कई बार बताते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते माया याद करने नहीं देती, नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए बहुत सहज। वानप्रस्थी पहले जमाने में क्या करते थे, वानप्रस्थी होते थे अपना घर बार सब छोड़ करके, छोड़ने मीन्स अपने बच्चों को देख करके वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। और आजकल के वानप्रस्थी क्या, हर चीज में वो मजबूत हुए पड़े, हर चीज को पक्का करके बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने इसके उदाहरण भी दिए हैं, एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, अविनाश का टाइम है, पुनर्जन्म उसको लेना है, उसका हिसाब है, तो आत्मा आ जाएगी। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहां, सब खत्म हो जाए। अविनाश के टाइम क्या होता है, कोई गर्भ में है, कोई कहां है, कोई कहां बैठा है, तो बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, सब अपना हिसाब किताब चुकटू कर वापिस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़े। अब बाबा ने देखो ऐसा शब्द बोल दिया, कोई कड़ा हिसाब किताब होगा तो बाबा कहते अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्के हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे क्या करते, बस गलत काम भी करते रहते हैं, बाबा को याद करते हैं और कहेंगे मेरे जैसा योगी कोई नहीं। अरे बाबा जानते हैं, खुद जानते हैं, ड्रामा जानता है। तो ऐसा भी नहीं है कि योग में भी रहो पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहेंगे और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, खुद नहीं किया, फिर नाम देंगे माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया। तो बाबा उसको क्या कहेंगे, कच्चा कहेंगे। हैं बाबा को बच्चे, लेकिन भूल जाते हैं, क्या क्या काम कर देते हैं, तो बाबा को कहना पड़ता है कच्चे हैं, फिर कच्चा कहेंगे। तो बाप समझाते, तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे, इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहती है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अपना चार्ट देखते रहो, पुरुषार्थ भी करना है, अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते मन को अमन नहीं कर सकते, दुनिया वाले क्या कहते मन अमन नहीं कर सकते, बाबा कहते सब कुछ हो सकता है, कहते मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे क्या कहना है, कितनी खुशी है कि हम जाएंगे, हम अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसी नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना, दुनिया में तो क्या करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, कोई सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। दुनिया में करते ना कई तरह के योग करते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, टाइम फिक्स कर देते हैं, इतने समय के बाद जागेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे टाइम बम सोते हैं ऐसे उनका भी बम होता, टाइम फिक्स होता कि हम 1 घंटे के लिए अनकॉन्शियस रहेंगे, 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के बाद फिर आप ही जाग जाते हैं। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं जैसे टाइम बम सोते हैं तो उनका भी टाइम होता है कि ये इतने घंटे के बाद फटेंगे। टाइम बम्स का भी टाइम होता है, कहीं पर भी रखेंगे वो टाइम फिक्स है ना, उतने घंटे के बाद ऑटोमेटिकली फट जाता है कि इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर है, यात्रा कर रहे हैं ना, कोई कहेगा हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बाबा के तो उसके साथ साथ ये पक्का करना है, कोई कहेगा हम जयपुर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन फिर साथ में पक्का करना है कि हम योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम मुंडा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ देंगे, जैसे मच्छर उड़ जाते हैं तो आज शरीर तो यहाँ रह जाएंगे, आत्मा उड़ जाएगी, विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अब विनाश के लिए बाबा कहते जब कर्मातीत अवस्था बनेगी तब विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का भी बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नोंद है। बाबा कहते सीन इतना भयंकर है जो पक्के योगी होंगे वो देख सकेंगे, साक्षी होकर के रहने वाले उससे न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा कहते विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नींद है, तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। बाबा ने क्या बताया कि विनाश के समय, ऐसे भयंकर समय पर अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। कौन रह सकेंगे, जो बाबा को याद करेंगे, साक्षी स्टेज पर रहेंगे। तो बाबा कहते खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे, ये दुनिया तो खलास होनी है, जानते हैं ना कि कलप कलप संगम युग होता है तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, विनाश के लिए कौन कौन से साधन हैं? एक तो बॉम्ब्स है, सिविल वॉर है, तीसरा नेचुरल क्लेमिटीज भी है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल क्लेमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कौन सी बात, कि अब हमको घर जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे वे कर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते खुद भी याद करो, आसपास के जो लोग हैं लौकिक उनको भी याद कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम कोशिश करनी चाहिए, करनी है जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। कन्याओं के लिए बाबा बता रहे घर का, जैसे लौकिक में भी कहती ना कन्या वह जो पियर घर ससुर घर का कल्याण करे, तो बाबा कहती कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये वर्षा मिलेगा, सीधी बात है ना। तो उनको एक ही बात समझानी है कि भगवान को याद करेंगे तो हम पावन बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते तो सीधी बात है ना, मुझ अलफ को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है ही। सीधी बात कि मुझे याद करो ये तुम्हारा है ही है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हारा है ही। मुझ अलफ को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो क्या करो, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बाबा जब कन्याओं को देखते थे तो बहुत उनको उमंग उत्साह दिलाते थे। बाबा कहते कन्या क्या नहीं कर सकती है। बाबा कभी कभी कन्याओं से मुझी बात का, अगर मैं कन्या होता तो मैं क्या नहीं करता। तो बाबा कहती थी कन्याओं को तो कोई बंधन नहीं है, क्या नहीं कर सकती है। और आजकल की कन्याओं को बंधन ना होते हुए भी खुद भी बंधन में फंसते, ये करे वो करे, ये डिग्री ले ले, ये पढ़ाई कर ले, सारी डिग्रीज इकट्ठी करते रहते हो। डिग्री क्या काम आएंगी पता नहीं, कितनी डिग्रीज होती है, इकट्ठी करती रहती इकट्ठी करती है। तो उसको देख देख के खुश होते मैंने ये डिग्री ली, उनको सुनाते मेरे पास ये डिग्री है। लेकिन बाबा कहते तो सब की सब यहाँ रह जाएगी। तो आज बाबा कन्याओं को भी उमंग दिला रहे हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग का वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है कि सबको पैगाम देना है। आगे भी तो दिया था ना बच्चों ने, कलर पहले भी दिया था, अभी भी देना, फिर भी देना है, बताना है। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा ही। अंडरस्टूड है, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी। तो बाबा कहते कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर के वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी है भारत की, कहते ना अभी हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो बाबा कहते उनको बताओ भारत की कहानी क्या है, यही स्वर्ग बनता है यही नरक बनता है, और बाबा आकर के फिर से स्वर्ग बनाते हैं। कहानी है भारत की, भारतवासियों को खड़ा करना, खड़ा करना मीन्स उनको ये ज्ञान देना, समझाना है। भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है ये बाप नई सृष्टि रचने वाला। शिव के मंदिर में जाओ, उनको बताओ कैसे शिव का कार्य है, तो ये बाप नई सृष्टि रचने वाला। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको पुकारते हो, वह बाबा आए हुए हैं। लेकिन कैसे आए हैं ये निराकार बाबा आए हुए, शिव को भी बाबा कहते ना, तो बाबा कहते उनको बताओ ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, बाबा कहते उनको जाओ बताओ कहानी बताओ कि अब 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बताते हैं। अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। होता ना कई बार किसको अच्छी बात सुनाते वो नहीं सुनता, तो उसको कहते हम तो बता रहे सुनो या ना सुनो, करो या ना करो, तो बाबा कहते उनको बोलो, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाप ही दुख करता और सुख करता है, थोड़ा ही समझाया और ये चला। कईयों को तो ऐसा होता था, बाबा का ज्ञान देते थोड़ा सुनते थे वो बाबा के बच्चे बन जाते थे, और कई ऐसे होते थोड़ा सुना और भाग जाते थे, नहीं सुनते थे। तो बाबा कहते बाप ही दुख करता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया ये चला, ये है तुम्हारा धंधा। दो तीन बातें बाबा ने कही। तो बाबा कहते हैं एक जगह सुनाया फिर चलो, फिर दूसरी जगह चले जाओ उसको सुनाओ, तुम्हारा धंधा। जैसे सेल्समैन होते ना, एक शॉप पे गए, दूसरी शॉप पे गए, तीसरी शॉप पे गए, तो तीन बातें। एक है थोड़ा किसी ने ज्ञान सुना तो बाबा का बन गया, और दूसरा है थोड़ा सुना और छोड़ के चले गए, और तीसरा बच्चों के लिए बाबा कहते एक जगह सुनाओ फिर दूसरी जगह जाओ फिर सुनाते रहो। ये है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज्ञान सुनाने में कितना हल्का है कि उनको बाप का परिचय दो और उनको कहो बाप कहते हैं मुझे याद करो। देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। बाबा कहते पहले बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई थी, अभी तो सबके पास जाते रहते हैं। तो बाबा कहते थे शिव के पुजारियों को सुनाएंगे वो खुश होंगे, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों को बताएंगे तो उनको लगेगा कि हम इस राजधानी में जाने वाले हैं। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। शिव बाबा की भी क्या करते हैं वो सारा परिचय दो, और लक्ष्मी नारायण की भी जीवन कहानी सुनाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश की पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा बाप समान मोहजीत बनना, बाबा तो मोहजीत है ना, तो बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज का वरदान सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह स्नेही को सदा साथ रखते। अब सब कौन बैठे हैं, परमात्म स्नेही। तो बाबा कहते जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। परमात्म स्नेही साथ है तो कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हैं उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, समस्याओं को खत्म करो। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना। स्लोगन, संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। आज का स्लोगन है, तो बाबा कहते हैं स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ये आज का व्यक्ति इशारा है, जो टाइटल चल रहा है, सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते, समय प्रति से कुछ ना कुछ चलता रहता ना, तो बाबा कहते समय प्रति समय में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे, फिर से पढ़ती हूँ। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। फिर बाबा कहते ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो? एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, ये है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में वह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो भट्टी का, वैसे तो बाबा ये कहते हैं, आज क्लास की जो टोली है वो गुलजार उपवन का खरबूजा है, जो बाबा की झोपड़ी के पास मिल रहा है, और वहां से क्लास की टोली लेंगे। आज तो भट्टी का लास्ट डे है, कल तो पूरा हुआ, और आज सब अच्छा टोली डिपार्टमेंट से आज क्लास की टोली गुलजार उपवन का बहुत सुंदर बहुत मीठा खरबूजा आया है, जो टोली डिपार्टमेंट से मिल रहा है। क्लास की टोली हमेशा टोली डिपार्टमेंट से लेते हैं, वहां से जाकर के लेंगे। अच्छा, भट्टी के भाई बहने जो बैठे वो हाथ खड़ा करें, कुछ तो उठ गए, जाने वाले हैं। अच्छा, जो जाने वाले वो तो अभी जा चुके हैं, और जो शाम को दोपहर को जाने वाले वो हाथ खड़ा करें, है शाम को जाने वाले या दोपहर को जाने वाले, ठीक है। बाबा के घर में आए, बाबा हर प्रकार से बच्चों को भरपूर करता है सदा, बाबा ने आज भी बता दिया। बाबा के घर आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बादल भर के जाते हैं, फिर जाकर के स्वयं भी पुरुषार्थ करना है, अपना चार्ट भी चेक करना है, औरों की भी सेवा करनी है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, जो